अमृतसर पहुंचते ही प्रियल, अर्जुन और प्रांजल सबसे पहले नानी के घर गए। नानी काफी समय बाद प्रियल से मिली थी, जिस वजह से वो प्रियल के आने की खबर से बहुत खुश थी और थोड़ी भावुक भी। प्रियल ने दरवाजे पर दस्तक दी। नानी उसे देखते ही बोली, गुड़िया तू आ गई, चला मेरे कोला, तुझे नहीं पता मैंने तुझे कितना याद किया इन दिनों में, आंख तरस गई तुझे देखने के लिए। प्रियल नानी के गले लगते हुए बोली, आई लव यू नानी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया था। बस कर तू और मिस, देखो तो अपने कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, खोती ना हो वेता। अर्जुन और प्रांजल दोनों पीछे से बोले, अरे अरे नानी, हम दोनों भी हैं, कोई हम भी गले लगा लो, हम यहाँ जश्न मनाने नहीं आए हैं। अर्जुन और प्रांजल नानी के गले लग गए। पुत्रो तुसी भी गले लग जाओ तो अनु कौन रोकता सी, नानी बोली। प्रियल इधर उधर देखते हुए बोली, मामा मामी कहाँ है नानी, और सिमरन दीदी कैसी है? तभी प्रियल की मामी वहां आ गई। प्रियल के मामा जी का नाम दीपक था और उनकी पत्नी सोनू उसकी नानी के साथ अमृतसर में रहती थी। उनकी एक बेटी सिमरन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में चंडीगढ़ रहती थी। सोनू प्रियल के गले लगते हुए बोली, अरे सिमरन तो अपने ससुराल में है बेटे, तू बता कैसी है, और प्रिंकू के क्या हाल चाल हैं? सबके हाल चाल अच्छे हैं मामी, अभी आप बताइए। अर्जुन खुशी से बोला, नानी इस बार तो हम लंबा रुकेंगे, तो बस आप तो हमारी खातिरदारी करना। नानी हल्की चपत मारते हुए बोली, ओए तू चुप कर मर जाने अर्जुन, तेरी इतनी खातिरदारी करूंगी सात जन्मों तक याद रखेगा। फिर मर जाना अर्जुन, हती हो गई नानी, मैं आऊंगा नहीं वापस अगर आपने मुझे मर जाना अर्जुन बोला तो, अर्जुन मुंह बनाते हुए बोला। प्रांजल हंस पड़ी, नानी ने तो फिर भी एक बार मर जाना अर्जुन बोला है, तूने तो खुद को चार बार मर जाना अर्जुन बोल दिया। सब में थोड़ी बहुत और बात हुई और फिर वो सब लोग नानी के रूम में चले गए और वहां बैठकर बात करने लगे। नानी हल्की आवाज में बोली, अब तो पता नहीं कितने दिन बचे हैं मेरी जिंदगी के, बस एक प्रियल की शादी देखनी है, फिर चैन से मरूंगी मैं। प्रियल चिढ़ते हुए बोली, ओ नो नानी, आपके ड्रामे फिर से शुरू हो गए, मैं नहीं करने वाली इतनी जल्दी शादी। तो गलत बात बोल रही हूँ, और ऐसे कैसे नहीं करेगी शादी? अर्जुन बोला, नानी ये प्रियल है ना, बस आपके सामने ऐसे भोली बन रही है, वरना ये तो मरी जा रही है कि कब नेके से प्रपोज करे, कब शादी करे और कब। प्रियल उसकी तरफ दौड़ती हुई बोली, रुक तुझे मैं बताती हूँ अभी, लगता है तुझे अपनी जिंदगी रास नहीं आ रही। प्रियल अर्जुन के पीछे दौड़ने लगी उसे मारने के लिए। प्रांजल ने इसी मौके पर कहा, तो गलत बात बोल रहे दी। प्रियल बोली, तुम दोनों को तो अभी मैं बताती हूँ, बची जाना आज तुम मुझसे। अर्जुन और प्रांजल आगे आगे दौड़ने लगे तो प्रियल उनको मारने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। नानी बोली, सोनू आज तो कितने दिनों बाद घर में रौनक लग गया है। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बीजी, प्रियल तो बस पूजा दीदी की ही छवि है, दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। प्रियल, अर्जुन और प्रांजल के आने से उनके घर में काफी शोरगुल लगा था। उधर निक एमा को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एमा किसी मीटिंग में बिजी होने के कारण उससे बात नहीं कर पा रही थी। निक ने उसे अपने घर पर आने का मैसेज छोड़ दिया और फिर अपने घर आ गया। निक ने अपने घर का दरवाजा खोलते हुए मन में कहा, आई एम सो हैप्पी, भले ही आज तुम मेरे पास नहीं हो एली, पर कहीं तो हो, यही मेरे लिए काफी है। पता नहीं कौन होगा वो लकी इंसान जिसके अंदर मेरी एली का दिल धड़क रहा है, शायद उसकी भी जो आदत है वो बिल्कुल मेरी एली जैसी होगी। निक डॉक्टर दीक्षित से मिलने के बाद बहुत खुश था। वो सीक्रेट रूम से एक कैसेट लेकर आया और उसे प्ले करके वीडियो देखने लगा। वो वीडियो एली के बर्थडे के दिन की थी। निक एली को अकेले किसी कमरे में लेकर जा रहा था। एली बोली, निक क्या कर रहे हो तुम, और मुझे यहाँ पर अकेले में क्यों लेकर आए हो, और वीडियो भी क्यों शूट कर रहे हो तुम? निक ने कहा, बस मेमोरीज कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वैसे भी यहाँ कोई नहीं आने वाला है। फिर वो एली के गले लगते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। निक क्या कर रहे हो, आंटी डांटेंगी अगर उन्होंने तुम्हें मुझे हक करते हुए देख लिया तो? नहीं डांटेंगी, एक बात बताओ, जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम्हारा दिल इतनी जोर से धड़कने लगता है। एली दूर जाते हुए बोली, तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। निक ने एली को फिर अपने पास खींच लिया, बताओ ना एली, क्योंकि ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है, तो जब तुम पास आते हो तो ये भी खुश हो जाता है और जोर जोर से धड़क कर अपनी खुशी बताता है। और एक बात बताओ, मेरा तो ये दिल हमेशा तुम्हारे लिए ही धड़केगा, हाँ तुम्हारा पता नहीं। निक ने कहा, पता है ना, मेरा दिल भी तुम्हारी धड़कन की धुन पहचानता है, तो ये भी तुम्हारे अलावा कभी किसी के लिए नहीं धड़केगा। और वो वीडियो खत्म हो गई। निक ने कहा, शायद आज भी मेरी एली का दिल सिर्फ मेरे लिए ही धड़कता है। तभी वहां एमा वहां आ गई। एमा आते ही बोली, अगर तुमने मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने के लिए बुलाया है तो मैं उसके बारे में बताने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं, मैं तुझे उसी दिन बताऊंगी जब तुम प्रियल को बताओगे तुम भी उससे प्यार करता हो। ओ शिट यार, अचानक निक बोला, इन सब में मैं प्रियल के बारे में तो भूल ही गया। एमा, तुम एक काम करो, मेरे लिए कॉफी और अच्छा सा कुछ खाने के लिए बना दो प्लीज, तब तक मैं इम्पोर्टेंट कॉल करके आता हूँ। इतना कहकर वो निकल गया। एमा उसके जाते ही बोली, ये नहीं सुधरने वाला, बस मौका चाहिए कि कोई इसके लिए अच्छा सा खाना बना दे। मुझे समझ नहीं आता ये एक को क्यों नहीं रख लेता, इसको फ्री में काम करने वाले बंदे ज्यादा पसंद आते हैं। निक प्रियल को कॉल करने लगा, लेकिन प्रियल अमृतसर चली गई थी, इसलिए उसका यूएसए का नंबर बंद आ रहा था और निक के पास उसके इंडिया का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। निक ने कहा, अब इसे क्या हुआ यार, अब तुम तो ऐसे मत किया करो, एक तुम ही तो हो जिससे बात करके मेरा सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। इतने में एमा ने निक को आवाज लगाई, निक बाहर उसके पास चला गया। एमा बोली, लो पकड़ो अपनी कॉफी और स्नैक्स, इतने कॉल क्यों तुमने मुझसे खाना बनवाने के लिए किए थे? निक ने कहा, मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरे लिए कुक करता है तो। एमा बोली, तो प्रियल को बोलना, वो कर देगी। अभी तो उसका फोन बंद आ रहा है, पर मुझे नहीं लगता मिस शर्मा को कुकिंग करनी आती भी होगी, देखना मुझे ही उसे खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा। निक रुका और एली वाली बात को याद करने लगा। उसे याद करते ही बोला, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? एमा बोली, क्या यार निक, बता दूंगी, बॉयफ्रेंड ही तो है, कौन सा टॉप सीक्रेट है? वो नहीं। निक कुछ देर चुप रहा। मुझसे क्यों छुपाया कि तुमने एली की डेथ के बाद उसका हार्ट डोनेट किया था? एमा ये सुनकर खामोश हो गई। बताओ मुझे, निक जोर से चिल्लाया। तुम्हें बताती मैं इस बारे में, तुम 2 साल तक ट्रॉमा सेंटर में थे, तुम्हें लगता है मैं इन हालातों में तुम्हें ऐसा कुछ बताऊंगी? तुम इसके बाद मुझे बता सकती थी, बाद में मुझे भी ठीक से याद नहीं रहा, बात भी पुरानी हो गई थी तो मैंने इसे भूलना ही सही समझा। निक ने अपने बालों में हाथ फेरा, फिर इधर उधर चहलकदमी की और उसके पास आकर बोला, एमा क्या तुम्हें याद है एली का हार्ट तुमने किसे डोनेट किया था? मुझे जानना है, आज डॉक्टर दीक्षित ने मुझे बताया एली के हार्ट डोनेशन के बारे में, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। एमा ने नामे सिर हिला दिया, मुझे नहीं पता एली का हार्ट किसे ट्रांसप्लांट किया गया, मुझे डॉक्टर ने बोला एक बच्चे की जान खतरे में है, अगर उसे आज हार्ट नहीं मिला तो उसकी जान जा सकती है। उसका ब्लड ग्रुप एली के ब्लड ग्रुप से मैच भी कर गया था, तो डॉक्टर ने उसी वक्त उसकी हार्ट सर्जरी कर दी थी। मुझे बस इतना पता है कि उस दिन उस बच्चे की सर्जरी नहीं होती तो उसकी जान चली जाती। इट मीन्स इट वॉज अ गर्ल।
एमा बोली, मैंने ये कब कहा कि वो एक लड़की थी, मैंने नहीं देखा वो कौन था, तो हम कैसे पता चल सकता है कि एली का हार्ट किसे दिया गया था, मुझे जानना है। एमा बोली, निक तुझे थोड़ा सा भी आइडिया है, प्रियल को इन सब का पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लग सकता है। तुम क्यों एली से आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो नहीं है इस दुनिया में, जा चुकी है यहाँ से, और जो है उसकी वैल्यू करो, कोई कुछ भी सोचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्रियल हो या तुम, मुझे बस जानना है और मैं जान कर रहूंगा। और रही बात जो है उसकी वैल्यू करने की, तो मैं प्रियल से बहुत प्यार करता हूँ, वो कभी नहीं बदलने वाला। एमा गुस्से में बोली, गो टू हेल। निक ने कहा, ऑफकोर्स चला जाऊंगा, पर उससे पहले कल तो मुझे उस हॉस्पिटल में लेकर जाना जहां पर वो सर्जरी हुई थी। मैं क्यों लेकर जाऊं तुम्हें वहां, मुझे नहीं पता उसके बारे में, मैं भूल चुकी हूं। देखो एमा, तुम जानती हो मैं एली को लेकर कितना सीरियस हूं, प्लीज तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लेता हूं, मगर ऐसा मत करो, मुझे ले जाओ वहां जहां उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। निक ये कहकर रोने लगा। एमा से ये देखा नहीं गया, उसने अपने को गले से लगाया और कहा, ठीक है ले जाऊंगी, मगर प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो तुम इसे लेकर ज्यादा डीप नहीं जाओगे, मैं नहीं चाहती तुम वापस ट्रॉमा में जाओ। ठीक है, निक ने कहा, ओके देन, तुम्हें कल पता चल जाएगा एली का हार्ट कहाँ और किसे ट्रांसप्लांट किया था। एमा के मुंह से सब कुछ बताने का सुनकर निक के चेहरे पर सुकून के भाव थे। अब से अगले दिन का इंतजार था जब वो सब कुछ पता लगा सकता था। अमृतसर, जब रात को सब सो गए तब प्रियल को एक बुरा सपना आया जिसमें निक उससे दूर जा रहा था। वो चौंक कर बैठ गई। अर्जुन वहीं रात को किसी से फोन पर बात कर रहा था। अर्जुन ने प्रियल को देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ प्रियल, ऐसे अचानक से उठकर क्यों बैठ गई नींद में? अर्जुन, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपनी नई गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है तुझे भी सबकी तरह? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, तुम कंटिन्यू करो, अब मुझे नींद नहीं आएगी, मैं बाहर जाकर थोड़ी वॉक करके आती हूँ। अर्जुन बोला, ठीक है। इसे भी पता नहीं क्या चुड़ैलों की तरह आधी रात को वॉक करने का शौक है। ये कहकर वो फिर से फोन पर बात करने लगा। प्रियल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फोन निकाला और बाहर आकर निक को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन निक कॉल पिक नहीं कर पाया। प्रियल बोली, क्या सच में निक मुझसे दूर हो जाएगा? मैंने तो बस उनकी हेल्प करने की कोशिश की थी, मुझे क्या पता था वो इतने नाराज हो जाएंगे। उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने मुझसे एक बार भी बात नहीं की, इतनी भी क्या नाराजगी की एक कॉल भी नहीं किया, और अब मैं कर रही हूँ तो कॉल पिक नहीं कर रहे। प्लीज निक, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू, ऐसा मत करो। तभी अर्जुन पीछे से आया, ओ फिल्मी लड़की, नंबर थोड़ी है उसके पास तेरा जो वो तेरे को कॉल करेगा, हमेशा दिल की सुनने वाली, कभी लॉजिक भी लगा लिया करो, नंबर है ना उनके पास वो। तभी प्रियल ने अपने बालों में हाथ फेरा, ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी, उनके पास मेरा इंडिया का नंबर कैसे होगा, पर मैंने कॉल किया तो उन्होंने पिक क्यों नहीं किया? टाइम देख पहले, माना कि यूएसए और इंडिया के टाइम में फर्क है, पर है तो इस वक्त वहां भी रात ही ना,
चला सोचा, और रही बात तेरे सपने की, तो तुझे कोई माता रानी ने अद्भुत शक्तियां तो दे नहीं रखी जो तेरे सपने सच होते हों। ऐसे छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हुआ करो। प्रियल ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दी। फिर अर्जुन और प्रियल दोनों सोने के लिए चले गए। क्रमशः